नमस्ते फ्रेंड्स, हम सबका स्वागत ओशो रेडियो में। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं अ वेरी ब्यूटीफुल ओशो नंबर के साथ। यस फ्रेंड्स, आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में डिस्कोर्स एस थमो सनातनो वॉल्यूम नंबर 55 से लिया गया है, जिसमें ओशो हमें दुख को हमें कैसे लेना चाहिए और किस तरह हमें सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की ही सुननी चाहिए, इसके प्रति जगा रहे हैं।
दूसरा प्रश्न। इस धम्मो सनातनो प्रवचन माला के चालू सत्र में आपने स्त्रियों के दुख प्रदर्शन की वृत्ति का ऐसा भव्य और विराट वर्णन किया कि अब यदि सच में भी हमें दर्द हो तो भी हम उसे प्रकट न कर पाएंगे। कृपया बताएं कि इस आत्मदमन के लिए हमारे आत्मदमन के लिए कौन जिम्मेवार होगा। दर्द प्रकट करने से प्रयोजन क्या है? दर्द झूठा हो या सच्चा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रकट करने की आकांक्षा क्यों? घाव को दिखाते फिरने की जरूरत क्या है? बाजार में घाव खोलने का कारण क्या है? सच्चा सही, सच्चे और झूठे में फर्क करने का भी क्या कारण है? क्योंकि प्रयोजन तो एक ही है। मैंने तुमसे ये नहीं कहा है कि झूठे घाव मत दिखाना, सच्चे हो तो दिखाना, ये मैंने नहीं कहा है। घाव दिखाने की आकांक्षा क्या? और अगर घाव ही दिखाने हो तो सिर्फ दिखाने के लिए सच्चे की आकांक्षा कर रहे हो, फिर झूठे ही दिखा लेना, और झंझट क्यों लेनी सच्चे घाव की? लेकिन दिखाने का रस तो एक ही है कि घाव के माध्यम से सहानुभूति मांग रहे हो, कोई तुम्हारे दुख में सहभागी हो। ये रुग्ण आकांक्षा है, सुख में सहभागी करो, दुख में कोई साथ भी हो गया कितनी देर साथ रहेगा? तुम जरा इसे ऐसा सोचो, जब कोई तुम्हारे पास आके अपने दुख की कथा कहता है सच्ची ही सही, तब तुम्हें क्या बड़ी प्रसन्नता होती है कि इनका संग साथ दें? ऊप पैदा होती है कि इनसे कब छुटकारा हो, ये सज्जन कब जाएं? अपना ही दुख क्या कम है कि इनके दुख की कथा सुनो? किसके दुख में किसको रस है? शिष्टाचारवश तुम सुन लेते हो, ये एक बात है, या तुम्हें भी कुछ अपना दुख रोना है इसलिए सुन लेते हो, ये दूसरी बात के पहले तुम रो लो फिर हम रोएंगे तो बराबर हो जाएंगे। तुम किस आदमी को कहते हो कि वो बड़ा उबाने वाला है, बोर है, कौन आदमी को तुम कहते हो? उस आदमी को तुम बोर कहते हो जो अपनी तो सुना लेता, तुम्हें मौका नहीं देता। और किसको तुम बोर कहते हो? जो तुम्हें तो सता लेता है और तुम्हें बिल्कुल मौका नहीं देता कि तुम उसको सता सको, वो बोले ही चला जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, उनकी वजह से मैंने टेलीफोन छूना छोड़ दिया। वो टेलीफोन तो बोलते ही चले जाते, हां हूं कहने का भी अवसर नहीं देते, रखने की भी सुविधा नहीं देते, क्योंकि वो भी अशिष्टाचार मालूम होगा। घंटों क्या प्रयोजन है? क्यों चाहते हो कि दुख को कहें, सुख को कहो, सुख को बांटो? मैं तुमसे यह कह रहा हूं, अगर तुम सुख को बांटने लगो तुम्हारा दुख अपने आप तिरोहित हो जाएगा, क्योंकि सुख बांट के तुम्हें जो प्रेम मिलेगा वो दुख बांट के मिली सहानुभूति से बहुत अन्य है। दुख कह के जो सहानुभूति मिलती वो तो प्रेम का आभास है, वो तो झूठा प्रेम है, वो तो मात्र शिष्टाचार है, सभ्यता है। सुख बांटो, प्रेम चाहो, तुम झूठे को क्यों मांग रहे हो? ये कृष्ण प्रिया का प्रश्न है। अब उसे तकलीफ लग रही कि अब तो अपना सच्चा दुख भी ना कह सकेंगे, लेकिन कहो क्यों? तो सवाल उठता ही तो दमन हो जाएगा। नहीं, दमन के लिए मैंने नहीं कहा, दरवाजा बंद कर लो, अपने से ही कह लो, दिल खोल के कहो, रो, छाती पीटो, लोटो, मगर ये जरा भी आकांक्षा ना हो कि कोई देखे। दुख क्या दिखाना, ये कोई शोभन है बात? घाव क्या उघाड़ने? रास्ते पे तुम देखते हो बैठे भिखारियों को, घाव उघाड़ उघाड़ के बताते। तुमने कभी बड़ा प्रेम अनुभव किया उनके प्रति? गिलानी उत्पन्न होती, तुम छिटक के भागते हो, ये क्या मामला है? कोई अपना कोल से भरा हाथ दिखा रहा है, कोई टूटी टांग दिखा रहा है, वो क्या कह रहे हैं? वो तुम्हारी सहानुभूति पर हमला बोल रहे हैं, वो सहानुभूति का शोषण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आदमी हो तो दो कुछ, वो तुमसे ये कह रहे हैं कि अगर न कुछ दिया न देखा तो दुनिया तुमको आदमी ना कहेगी। वो तुम्हें एक झंझट में डाल रहे हैं, वो तुम्हारे सामने एक प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि अब देखें, बिना दिए जाते हो, अधार्मिक, जो देता है वो धार्मिक। दान को तो शास्त्रों ने पुण्य कहा है, वो कह रहे हैं, भिखारी तुमसे कह रहे हैं इधर देखो, और वो अपने घाव बनाए बैठे, अक्सर तो झूठे पर सच्चे भी हो, तो भी किसी का घाव देखने को किसको उत्सुकता है। ऐसी रस हो तो अस्पताल चले गए, जरा देखाए सबको, किसको रस है? ये रस रुग्ण है। जो तुम्हारे घाव देखने में रस लेता है वो तुम्हें घाव में देखना चाहता है, उसको ही मनोवैज्ञानिक सैडिस्ट कहते हैं, वो पर दुखवादी, उसका रस गलत है, रुग्ण है, बीमार है। वो तुमसे और कहता जरा और उघाड़ उघाड़ के दिखाओ, उसका रस गंदा है, उसका रस स्वस्थ नहीं। तुम भी रुग्ण हो कि अपना दुख दिखाते हो? दुख कोई दिखाने की बात है, एकांत में बैठ जाओ, रो लो, कोई मना नहीं कर रहा है, रेचन कर लो। जिंदगी सोच बने, साजना होने पाए, दिल तो टूटे मगर आवाज ना होने पाए। आवाज क्या करनी, मगर दिल तो टूटते नहीं और तुम आवाज करते हो। तुम लोगों को ये बताना चाहते हो, देखो हम दिल तोड़ के बैठे हैं, अब तो आ जाओ, सहानुभूति दिखाओ, आंसू बहाओ, हमने दिल तक तोड़ दिया, अब और क्या चाहते हो। जरूर मोहल्ले पड़ोस में से कोई ना कोई आ जाएगा और सहानुभूति दिखाएगा, या तो वो खुद भी रुग्ण है और या फिर सिर्फ शिष्टाचार बस आया है। लेकिन किसको रस हो सकता है तुम्हारे दुख में, तुम्हारे नासूरों में किसको सौंदर्य का दर्शन करना है? अपने तो ही रखो, रेचन कर लो, ध्यान करो, एकांत में उनको उघाड़ लो, दीवानों से बात कर लो, पहाड़ों से बात कर लो, वृक्षों से कह दो, मगर आदमियों के सामने घाव मत उघाड़ो। क्योंकि अगर तुमने घाव उघाड़े और उनकी सहानुभूति तुम्हें मिली तो तुम घावों को झूठा करने में लग जाओगे, तुम पक्का न कर पाओगे कहां तक घाव सच्चे थे और कहां झूठे हो गए। तुम घावों को बड़ा करने लगोगे, तुम घावों को रंगने लगोगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं, जरा ढंग से दिखाना चाहिए। तुम कहानी को सजाने संवारने लगोगे, तुम उसमें जोड़ने घटाने लगोगे, और ऐसा नहीं कि दूसरे इस पर भरोसा करेंगे, तुम भी इस पर भरोसा करने लगोगे। बहुत बार दोहराई गई कहानी चाहे झूठी ही हो सच्ची हो जाती। नहीं, दुख की कहानियां मत दोहराओ, डर है कि कहीं तुम्हें उन पर भरोसा ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दुख ही तुम्हारा व्यवसाय हो जाए, जैसा कि बहुत लोगों का हो गया है। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं, सुख को चर्चा करो, सुख के गीत गाओ, जिसके तुम गीत गाओगे वो बढ़ेगा, जिसकी तुम चर्चा करोगे वो फैलेगा, और जिसकी तुम बार बार चर्चा करोगे उसका तुम पर प्रभाव बढ़ेगा और तुम्हारी उस पर आस्था बढ़ेगी। तुम आयोजन कर रहे हो महासुख का, अगर तुम सुख की चर्चा करते हो, अगर तुम दुख की चर्चा करते हो तुम महादुख का आयोजन कर रहे हो। अब तुम पूछते हो दमन की जिम्मेवारी किस पर, जैसे कि जिम्मेवारी मुझ पर होगी क्योंकि मैंने कहा दुख मत बताओ। चलो ये भी सही, ये जिम्मेवारी हम ले लेते, छोड़ो तो किसी बहाने सही, ये भी ठीक। दमन के लिए मैंने कहा नहीं, लेकिन दूसरे के ऊपर दुख उछालना तुम्हारा रेचन है। मैं तुमसे कहता हूं कचरा पड़ोसी के घर में मत फेंको, तुम कहते हो तो हमारे घर में कचरा इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर जिम्मेवार कौन? तुमसे कहा कब कि तुम कचरा मत फेंको, लेकिन कचरा घर है वहां फेंको, पड़ोसी के घर में नहीं फेंकना है, चलते राह चलते लोगों के ऊपर कचरा नहीं फेंकना है। क्योंकि तुम अगर पड़ोसी के घर में फेंकोगे, पड़ोसी तुम्हारे घर में फेंकेगा, लेन देन की बात है, तो कचरा बदल जाएगा, छुटकारा कैसे होगा? यही हो रहा है, तुम दूसरों में दुख उंडेलते हो, दूसरे तुम में दुख उंडेलते हैं। बंद करो, ये नाता बुरा है, इससे एक बीमार समाज पैदा हुआ है। जीवन में सदा स्मरण रखो, सुंदर के लिए प्रेम मांगो, असुंदर के लिए नहीं, सुख के लिए स्वागत मांगो, दुख के लिए नहीं। क्योंकि जिसके लिए तुम स्वागत मांगोगे अगर स्वागत मिला तो तुम फिर उसे बढ़ाओगे। स्वभावता ये तो सीधा नियम है, गणित है। जब दुख के कारण इतना स्वागत मिलता हो तो फिर तुम कफन बांध के घूमोगे, तुम सिर में कफन बांध लोगे। जब दुख के कारण लोग इतना शहीद मानते हो तुम्हें, तुम सूली पे चढ़ जाओगे। तुम्हारे बॉस से शहीद इसलिए सूली पे चढ़ गए क्योंकि उनको ख्याल है शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे मेले। मरने को भी तुम तैयार हो, मेला जुड़ना चाहिए, धूम धड़ाका हो, फुलझड़ी फटाके हो, फूल मालाएं पहनी जाएं, तुम मरने को तैयार हो। जिंदगी तुम्हें काम की नहीं मालूम पड़ती, तुम्हारा दृष्टिकोण रुग्ण है, इसलिए तो सारी पृथ्वी रोग से ग्रस्त है। दुख के संबंध में चुप रहो, वो चुप्पी तुम्हारा दुख में जो स्वार्थ है उसको काट देगी। वो चुप्पी दुख से तुम जो मजा ले रहे थे, दुख में जो रस ले रहे थे, उसकी धारा को तोड़ देगी। उससे दुख मरेगा, तुम धीरे धीरे दुखी न रह जाओगे। सुख में नियोजन करो। हमेशा अपना लंगड़ा लूलापन मत दिखलाओ, कुछ सृजनात्मकता दिखलाओ। लंगड़े हो कोई हर्जा नहीं, चित्र तो बना सकते हो हाथ से। अगर किसी का प्रेम मांगना है चित्र बना के, मूर्ति तो गढ़ सकते हो। अंधे हो गीत तो गा सकते हो। बहरे हो किसी को प्रेम से तो देख सकते हो। गलत के लिए मत मांगो, मत अपना कान दिखाओ कि मैं बहरा हूं, अपनी सुंदर आंख दिखाओ। मत अपनी टांगों को दिखाओ कि टूटी हैं, उन्हें छिपा लो। लोग वैसे ही दुखी हैं, उन्हें टूटी टांगें क्या दिखाना, इससे प्रयोजन भी क्या है, टूटी टांगों का इतना विज्ञापन क्या। तुम्हारे हाथ तो ठीक है, मूर्ति बनाओ, कविता लिखो, सितार बजाओ, कुछ करो, सृजनात्मक के लिए मांगो। इधर मेरे पास लोग आ जाते, एक महिला, एक पागल लड़के को लेके आ गई। उसने कहा आप तो इसे आप ही संभालिए, जैसे कि कोई भेंट लाई हो। मैंने कहा कि कभी पागल खाना खोलेंगे तो इसको बुला लेंगे, अभी जरा मैं दूसरे पागलों से उलझाऊं, इन पागलों पे भी ध्यान देंगे पर अभी उपाय नहीं है। उसने कहा कि ये कैसा आश्रम, दुखियों का कोई सहारा नहीं। मैंने कहा दुख में मेरी उत्सुकता नहीं, ये कठोर लगता है लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं दुख में मेरी उत्सुकता नहीं। दुखवादियों ने बड़े प्रचार किए हैं दुनिया में कि दुखी पे दया करो, मैं तुमसे कहता हूं सुखी पे दया करो तो दुनिया में दुख कम होंगे। इन नासमझों की शिक्षाओं की वजह से दुख बढ़े। वो कहते हैं अंधे लूड़ों के हाथ पर डाबो, तो जिनको भी हाथ पर दबाने वो अंधे लूड़े होके बैठे। एक लंगड़ा आदमी एक औरत भीख मांग रहा था उसके द्वार पर, उस औरत ने कहा कि देखो तुम तो भले चंगे हो, जरा सा पैर में मालूम होता मोच लग गई, आंखें तुम्हारी ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, अंधे होते तो मैं तुम्हें देती भी कुछ। ये लंगड़ा होने से क्या होता है, हजार काम कर सकते हो, आंखें तो साबित है, आंख है तो जान है। तो उसने कहा देवी जी पहले मैं अंधा भी हुआ करता था, तब लोग ये कहते थे अंधे हो इससे क्या होता, अरे हजार काम कर सकते हो, अंधे कई काम करते हैं। तब से मैं लंगड़ा हो गया। अब देखो तो लोग ही समझाने लगे कि तुम अगर चाहते हो कि दुनिया से दुख मिटे, दुख घटे, तो लोगों को ऐसी स्थिति मत बनाओ जिसमें कि उनको दुख में स्वार्थ का हित मालूम होने लगे। श्रेष्ठ को सत्कारो, सुंदर को स्वीकारो, सुख का गुणगान करो। दुख है उसका इलाज करो मगर स्वागत नहीं। दुख है उसको मिटाने का उपाय करो लेकिन सम्मान नहीं। दुख है उसे सहानुभूति दो लेकिन इतनी नहीं कि लगे कि तुम प्रेम में पड़ गए हो। दुखी को यह पता होना चाहिए कि लोग शिष्टाचार, संस्कार, सभ्यता के कारण सेवा कर रहे हैं, उन्हें सेवा में कोई रस नहीं आ रहा है, मजबूरी में सेवा कर रहे हैं, करनी पड़ रही इसलिए सेवा कर रहे हैं। जब घर में तुम्हारे कोई बच्चा बीमार हो तो उसे साफ साफ पता चल जाने दो कि तुम्हारी बीमारी में कोई उत्सुकता नहीं, तुम बीमारी को समाप्त करना चाहते हो। तुम सेवा कर रहे हो क्योंकि बीमारी मिटे इसलिए, लेकिन ज्यादा लाड़ प्यार मत बतलाओ, गले मत लगाओ, सिर मत सहलाओ। बच्चे को कहीं ये भ्रांति मत दे दो कि जब वो बीमार होता है तब उसे प्रेम मिलता है। अगर ये एक दफा उसके मन में भाव आ गया कि जब मैं बीमार होता हूं तब प्रेम मिलता है, जब मैं स्वस्थ होता हूं तब कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं, तुमने एक जहर का बीज बो दिया। अब ये बच्चा बीमार होना चाहेगा। अब जब जब भी इसको प्रेम की कमी मालूम होगी जीवन में ये बीमार पड़ जाएगा। पूछो मनोवैज्ञानिकों से, वो कहते हैं 50 से लेकर 70% बीमारियां झूठी आदमी उनको पैदा कर रहा है, क्योंकि उन बीमारियों से कुछ मिलता है जो अन्यथा मिलते ही नहीं। जब तुम बीमार हो जाते हो पास पड़ोस के लोग तुम्हें देखने आने लगते हैं, जब तुम स्वस्थ थे इनमें से कोई भी ना आया, तभी आना था ताकि स्वास्थ्य का रस पैदा होता, तब कोई ना आया। जब तुम सुंदर दिखते हो, स्वस्थ दिखते हो तो कोई नहीं कहता आह कितने सुंदर, जरा तुम्हारी शक्ल पीली पड़ी और लोग मिलने लगे कहने लगे अरे बड़े बीमार दिखाई पड़ते हो, क्या हो गया। बीमार हो तो दफ्तर से छुट्टी मिल जाती है, अगर मैं दुनिया बनाऊं तो जब तुम स्वस्थ हो तब तुम्हें छुट्टी मिल जानी चाहिए कि ये मौका है, गीत गाओ, नाचो, वृक्षों से मिलो, पहाड़ों पर जाओ। ये क्या बीमार हुए कि छुट्टी, बीमार हुए तो कोई कह नहीं सकता कि छुट्टी नहीं देते। बीमारी पर दया होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक अलग ही जीवन दृष्टिकोण दे रहा हूं। दृष्टिकोण पूरा यह है कि बीमारी है माना, होनी नहीं चाहिए। बीमारी है माना, मिटाने का उपाय करेंगे, लेकिन इसके साथ प्रेम इत्यादि को पागना उचित नहीं। दुनिया बहुत सुंदरतर हो सकती है।
जगाना होगा जीवन के उजड़े उपवन में, फिर मधुमास जगाना होगा, प्राणों की उत्तप्त धरा पर फिर रसधार बहाना होगा। खरे अमोलक कंचन है हम, पर माटी के मूल बिके जग सागर के सरसिज है हम, पर करदम में लिप्त दिखे है। खरे अमोलक कंचन है हम, पर माटी के मूल सागर के सरसिज है हम, पर करदम में लिप्त दिखे है। पाक नहीं जीवन बंसी में, सुर छेड़े हम जैसे चाहे। बहुत गालिए राग मरण के, अब जीवन के गाना होगा। जीवन के उजड़े उपवन में, फिर मधुमास जगाना होगा। प्राणों की उत्तप्त धरा पर, फिर रसधार बहाना। जग के छल छंद हो गए, हम अपने ही अहंकार के कारागृह में बंद हो गए। हम अनुपम गोविंद गीत है, पर जग के छल छंद हो गए। हम अपने ही अहंकार के कारागृह में बंद हो गए। हमें देह के देवालय में करनी होगी प्राण प्रतिष्ठा। भावों का नैवेद्य चढ़ाकर झूठा दीप मनाना होगा। हमें देह के देवालय में करनी होगी प्राण प्रतिष्ठा। भावों का नैवेद्य चढ़ाकर झूठा दीप मनाना होगा। जीवन के उजड़े फिर मधुमास जगाना होगा। प्राणों की उत्तप्त धरा पर, फिर रसधार बहाना होगा। अपने ही घर में है, पर दुख सपनों में भटक गए हैं। हम तो हैं आकाश खुले, पर गम के बादल लटक गए हैं। हम अपने ही घर में है, पर दुख सपनों में भटक गए हैं। हम तो हैं आकाश खुले, पर गम के बादल लटक गए हैं। अपने घट में राम बसे, पर इच्छाओं के दास हुए हम। फिर जीवन के वृंदावन में मुरलीधर बन जाना होगा। अपने घट में राम बसे, पर इच्छाओं के दास हुए हम। फिर जीवन के वृंदावन में मुरलीधर बन जाना।
आखिरी प्रश्न। अंगूठी गोल है और अंत नहीं है उसमें। आपके लिए मेरे प्रेम का भी अंत नहीं है। कल पहली बार आपका प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। आपकी किताबें अब तक पढ़ी थी। प्रवचन से निष्पत्ति ली कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। क्या सही है यह? संदेह क्यों है? सही के लिए सदा बाहर से सहारा क्यों मांगते हैं हम? कब अपने पे भरोसा करोगे? प्रेम जैसी गहन बात भी उठती है, उस पे भी लगता है पता नहीं सही हो ना हो। इसलिए तो परमात्मा चूक रहा है। परमात्मा सामने भी खड़ा हो जाए तो तुम किसी न किसी और से जाके पूछोगे कि खड़ा तो था, सही है या नहीं। तुम्हें अपने पे भरोसा क्या बिल्कुल खो गया? बिल्कुल सही है, प्रेम के अतिरिक्त कोई शास्त्र नहीं। लेकिन प्रेम के शास्त्र की पहली शर्त यही है कि संदेह गिराओ, आस्था जगाओ। और आस्था किसमें? अपने में। जब तुम्हारी आस्था स्वयं में न होगी तो मुझ में क्या होगी? आखिर तुम ही तो मुझ पे आस्था करोगे। अगर तुम्हारी अपने में ही आस्था नहीं तो अपनी आस्था पे क्या आस्था होगी? अंततः तो तुम ही हो। धीरे धीरे अपने पैरों पर भरोसा करो। धीरे धीरे चाहे भूल हो, चूक हो, भटको भी तो हर्ज नहीं। उस भटकाव से भी शिक्षण मिलेगा, अनुभव होगा। लेकिन धीरे धीरे ये कोशिश करो कि जब जीवन में कोई निष्पत्ति मालूम पड़े, कोई सार मालूम पड़े किसी बात का, प्रयोग करो। अपनी भीतर की आवाज थोड़ी सुननी करो, सुननी शुरू करो। वहां परमात्मा बोलता है। बाहर की आवाजें कितनी ही मधुर हों, उनसे मुक्ति न हो सकेगी। बाहर की आवाजों से मुक्ति तभी हो सकती जब वे तुम्हें तुम्हारी आवाज पे लौटा दें। इसलिए मैं तुमसे इतना कठोर भी हो जाता हूं कभी। अब तुमने तो बड़ी प्रेम की बात कही है। अंगूठी गोल है और अंत नहीं है उसमें। आपके लिए मेरे प्रेम का भी अंत नहीं है। तुमने तो बड़े प्रेम से प्रश्न पूछा है, फिर भी तुम्हें लगेगा कि मैं कठोर हूं। जरूरी है कि मैं कठोर रहूं? मैं तुम्हें तुम्हारे पर ही फेंक देना चाहता हूं। तुम आत्मनिर्भर बनो। मुझसे क्यों पूछते हो क्या सही है? ये बात प्रेम की इतनी सही है, इस पे भी तुम्हें थोड़ा संदेह? इसे जीवन में उतारो। मेरे कहने के कारण नहीं, तुम्हारे भीतर ये भाव उठा इस कारण। मुझे सुनो, समझो, लेकिन अंततः तो अपने भीतर के भावों को पकड़ो। मेरे पास तुम्हारे अंतर्भाव साफ होने लगे बस काफी। मैं तुम्हारे लिए कोई आदेश नहीं हूं, तो मेरी तरफ मत देखो कि मैं तुमसे कहूं बाएं चलो तो बाएं, दाएं चलो तो दाएं। इसी में तो खराबी हुई, लोग तुम्हें ऐसे ही तो चलाते रहे। और धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की वाणी सुनाई पड़नी ही बंद हो गई। मेरा प्रयोजन बिल्कुल और है, मेरा उपयोग बिल्कुल और है। तुम मेरे साथ रहकर अपनी चाल पहचान लो। तुम मुझे सुन के अपने को सुनना जान लो। मेरी आवाज धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी आवाज से परिचित करा दे। जब तुम्हें अपने भीतर का सूत्र मिल जाए, फिर उसके सहारे चलो। चलने का एक ही उपाय है कि तुम उसे प्रयोग करो। अब तुम्हें लगा ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये बात अगर समझ में आ गई तो और सब तरह का पांडित्य जो तुमने सीखा हो ढाई अक्षर के अलावा, उसे कचरे घर में फेंका हो। सब पोथी पत्रा बांध के कचरे घर में रख दो। अब तो ढाई अक्षर बस वेद है। तो पहला काम कि ढाई अक्षर के अलावा जो भी कूड़ा करकट तुम्हारे भीतर हो उसे विदा करो, सफाई करो घर की, जगह करो। फिर दूसरी बात है कि वो जो ढाई अक्षर है प्रेम का, वो पोथी में लिखा अक्षर नहीं है। अक्षर शब्द का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी मिटे ना। बस प्रेम ही है जिसका कभी क्षय नहीं होता, कभी मिटता नहीं। प्रेमी मिट जाते हैं, प्रेम नहीं मिटता। प्रेम करने वाले विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, प्रेम बना रहता है। प्रेमी बदलते जाते हैं, प्रेम की कथा चलती रहती, पात्र बदलते रहते हैं, लीला जारी। प्रेम का कथानक शाश्वत है। ढाई अक्षर का अर्थ है प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो जिसका क्षय ना हो। हालांकि तुम्हें तो जब भी तुम प्रेम करते हो तो ऐसे ही लगता है अब इसका क्षय ना होगा, और दूसरी घड़ी क्षय हो जाता है। तुम कह भी नहीं पाए कि क्षय कभी ना होगा कि क्षय हो गया, वस्तुतः तुमने कहा और क्षय हो गया। तुम्हारा कहना ही संदेह से निकलता है। जब तुम किसी को कहते हो कि ये प्रेम सदा रहने वाला है, तभी जरा गौर से देखना, सदा में जरा नीचे उतरना, पैर डगमगाते पाओगे। सदा फिर से विचार करो, सदा तुम कर सकोगे? तुम किसके आश्रय पर ये भरोसा कर रहे हो? तुम्हारे आश्रय पर? एक क्षण का तो ठिकाना नहीं। अभी कुछ अभी कुछ, अभी सुबह अभी शाम, एक क्षण का तो ठिकाना नहीं है तुम्हारा। अभी क्रोध जल रहे हो, अभी प्रेम से भर गए हो। अभी गीत उठता था, संगीत उठता था, अभी गाली निकल आई। तुम किसके आधार पर आश्वासन दे रहे हो? नहीं, इतना बड़ा आश्वासन मत दो, कहीं ये आश्वासन बंधन ना हो जाए। और ये आश्वासन टूटेगा तो तुम्हारी आत्मा खंडित होगी। तुमने तो अब तक जितने प्रेम जाने सभी का क्षय हो जाता है। पत्नी का प्रेम जाना है बचा, मां का प्रेम जाना है बचा, बेटे कहे चले जाते हैं कि हां मां प्रेम करते हैं, लेकिन करते हैं, औपचारिकता रह जाती, जाते हैं पैर भी छुआते हैं, लेकिन मां आ जाए और दो चार महीने साथ रह जाए तो प्रेम का पता चल जाता है। जिस पत्नी को तुम प्रेम करते हो मायके चली जाती तो ऐसा नहीं लगता कि चलो छुटकारा हो, एक दो दिन अब शांति से रहेंगे, झंझट मिटी। घर से भागते हो, घर आते आदमियों के पैर में देखता हूं, उनमें वो गति नहीं होती जो घर से जाते वक्त होती। घर से निकलते लोगों को देखता हूं, तब फड़कते निकलते चले, झंझट मिटी। घर लौटते ऐसे लौटते का फिर फंसे, फिर वही झंझट। पति पत्नियों से बात करने में डरते हैं क्योंकि बात में से बात निकलती, फिर पता नहीं कहां ले जाए। बात ही नहीं चलाते, चुप्पी साधे रहते, अखबार पढ़ते, रेडियो पढ़ते, टेलीविजन देखते, हजार दूसरे काम करते, पत्नी से आंख नहीं मिलाते क्योंकि कुछ बात निकल आए। और बात में तो सदा फिर कांटे ही उगते हैं, कुछ सार तो लगता नहीं, विवाद खड़ा हो जाता। प्रेम, तुमने अपने बच्चों को प्रेम किया? अगर तुम्हारा बच्चा डाकू बन जाए तुम प्रेम करोगे? राजनीतिक बन जाए तो करोगे? राजनेता हो जाए, आह सौभाग्य। सब पुरखे प्रसन्न होंगे, तुम ही नहीं। स्वर्ग से पुरखे एकदम फूल बरसाएंगे कि अपना ही वंशधर देखो मंत्री हो गया, लेकिन डाकू हो जाए, चोर हो जाए, बेईमान हो जाए, बगावती हो जाए, शराबी हो जाए, तो तुम्हें स्वीकार करने में डर लगने लगता है कि मेरा बेटा है। प्रेम, ये प्रेम भी कुछ स्वार्थ मालूम पड़ता है, ये प्रेम भी कुछ महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा मालूम पड़ता है। नहीं, ये ढाई अक्षर वाला प्रेम नहीं। तो फिर जरा तलाश करो, अपने प्रेम में तलाश करो, तुम वहां कहीं भी ढाई अक्षर वाला प्रेम ना पाओगे। तब तुम्हें सोचना पड़ेगा ढाई आखर प्रेम का, तो तुम्हें प्रार्थना सीखनी पड़ेगी, तो तुम्हें फिर परमात्मा से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। अक्षर से करोगे प्रेम तो ही अक्षर होगा। प्रेम शब्द में ढाई अक्षर है, दो अक्षर हैं और एक मात्रा है, इसलिए ढाई। अंततः दोनों अक्षर खो जाते हैं, मात्रा ही रह जाती है। भक्त भी खो जाता, भगवान भी खो जाता है, सिर्फ प्रेम रह जाता है। जब दोनों खो जाते हैं तभी अक्षर बचता है, जब तक दो हैं तब तक तो थोड़ी कलह जारी रहती, तब तक तो थोड़ा मान मनोवल चलती, रूठना मनाना चलता है। जब तक दो हैं तब तक तो डर है टूट जाने का, डर कहना ठीक नहीं, निश्चित ही है टूट जाना। दो को कब तक जोड़े रखोगे? द्वंद्व द्वैत अक्षर में नहीं ले जा सकता। किसी ऐसे प्रेम को खोजो जहां डूब जाओ, मिट जाओ, जहां तुम न रहो, जहां न मैं बचे न तू बचे, जहां मात्रा भर बचे, बस प्रेम भर बचे, फिर अक्षर का उपलब्धि, शाश्वत की सनातन की उपलब्धि हुई। ठीक सूत्र ख्याल में आया है, अब इसको खो मत देना, अब इसको जोर से पकड़ो, ये तुम्हारी जीवन दृष्टि, जीवन की दिशा बन जाए। जब तलक दिल में मोहब्बत न हुई थी पैदा, ये जमी सादा थी जन्नत न हुई थी पैदा, जिंदगी में कोई लज्जत न हुई थी पैदा, जहन और फ्रिक में अजमत न हुई थी पैदा, जब तलक दिल में मोहब्बत न हुई थी पैदा, मेरे अफकार के फूलों में बहार आई न थी, मेरे असार में रंगीनी और रानाई न थी, मेरे तखील में नुदरत न हुई थी पैदा, जब तलक दिल में मोहब्बत न हुई थी पैदा, ये जमी सादा थी जन्नत न हुई थी पैदा। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग का द्वार है। पृथ्वी ही परमात्मा हो जाती है अगर तुम पे प्रेम बरस जाए। प्रेम मार्ग है, लेकिन प्रेम से लोग बचते हैं। कहते तो बहुत, चर्चा तो बहुत करते प्रेम की, लेकिन बचते, क्योंकि प्रेम में मिटना पड़ता है। प्रेम महामृत्यु है, मिटने की तैयारी करो। सभी शास्त्र तुम्हें बचा लेते हैं, प्रेम तुम्हें मिटा देता है, इसलिए वही असली शास्त्र है। सभी शास्त्र किनारे किनारे हैं, प्रेम मझधार है। जो बचना चाहता है किनारों को पकड़ा रहे, लेकिन जिसने बचाया वो मिट जाएगा। जो मिटने की तैयारी रखता हो मझधार में आ जाए, और मजा यही है। सनातन धर्म यही है, एस धम्मो संतनो, कि जो मिटा वही बचा, मझधार में जो डूबा उसी ने असली किनारा पाया है। प्रेम आग में उतरना है, अंगारों पर चलना है, प्रेम अपने को मिटाना है। मृत्यु भी छोटी मृत्यु है प्रेम के सामने, क्योंकि मृत्यु में भी शरीर ही जाता है। तुम, तुम्हारा मन तो सब बच जाते, नए चोला नए वस्त्रों में प्रवेश कर जाते। प्रेम तुम्हारे मन तुम्हें डूब ले जाता है। जो प्रेम में मरा फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं, जो बिना प्रेम के जिया वो जिया ही नहीं। जब तलक दिल में मोहब्बत न हुई थी पैदा, ये जमी सादा थी जन्नत न हुई थी पैदा। प्रेम तो स्वर्ग का सूत्र है, मगर करोगे तो, प्रेम हो जाओगे तो ये शब्द न रह जाएं, ये किताबों में लिखे अक्षर न रह जाएं, ये जीवन में अक्षर का आविर्भाव बने। और मुझसे मत पूछो कि ये सही है या गलत, मैं कौन। करो और जानो, जियो और जागो, परखो जीवन में। मेरे कहने से क्या होगा अगर मैंने कह दिया कि हां ठीक है इसलिए तुमने मान लिया, तो फिर तुमने शास्त्र बना लिया, फिर मैं तुम्हारा शास्त्र हो गया, फिर भी तुमने अंतर्वाणी न सुनी, फिर तुम किसी और से पूछा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने बुद्ध से पूछा, धम्मपद से पूछा, जीसस से पूछा, बाइबल से पूछा, मोहम्मद से पूछा, या कुरान से पूछा, या मुझसे पूछा। पूछते क्यों हो? भरोसा करो, अपनी आवाज पर थोड़ा भरोसा करो, अपने पैरों पर थोड़ा भरोसा करो, ये डर छोड़ो। ये डर भी मन का है, और यही मन तो सारे शास्त्रों को पकड़ता है, ये मुझे भी पकड़ लेगा। मैं जानता हूं तुम में से जो डरे हुए हैं वो मुझे भी शास्त्र बना लेंगे। भय सदा शास्त्र बना लेता है, और जहां शास्त्र बना वहीं धर्म की कब्र बन गई। तुम मुझे शास्त्र मत बनाओ, तुम मुझे अनुभव बनाओ, मुझसे सुनो, जीवन में परीक्षा करो। तुम उल्टा करते हो, मुझसे सुनो समझो, जीवन में जाके जीवन से पूछो क्या ये सही है, जो सुना क्या ये सही है। जीवन तुम्हें उत्तर देगा, जीवन कसौटी है। तुम अभी उल्टा करते हो, जीवन आवाज देता है, तुम मुझसे पूछने आते हो क्या ये सही है। एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा मुझे विवाह करना, आप क्या कहते। मैंने कहा तू कर ही ले, क्योंकि जिसको नहीं करना वो पूछने नहीं आता, तू कर ही ले। उसने कहा फिर आपने क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैं किसी से पूछने नहीं गया, पूछने जाता तो मैं पूछने जाते ही नहीं कर ही लेता। पूछने क्या जाना है, अपने से पूछना है। अब तू पूछने आया इसलिए मैं कहता हूं कर ही ले, वो राजी न हुआ, क्योंकि मैंने उसी पर फेंक दिया। वो चाहता था मैं कुछ कहूं, करेगा तो वो अपनी ही, कौन ने कब किसी और की है। इसे तुम थोड़ा समझो, ये बेईमानियां धोखे बंद करो। करेगा तो वो अपनी ही, वो जिम्मेवारी भर मुझ पर छोड़ना चाहता था। मैं कहता कर ले, जरूर कर ले, बिल्कुल ठीक है कर लेना। तो वो कहता आप कहते हैं इसलिए करता हूं, अगर उसको करना है तो करेगा, कहेगा आप कहते हैं। अगर वो देखेगा कि नहीं ये अपने को करना नहीं तो किसी और से पूछेगा। मुल्ला नसुद्दीन ने मुझसे कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दफ्तर जाने का मन नहीं होता तो क्या करना। तो मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल, तू सिक्का हाथ में लेके फेंक लिया कर, तय कर लिया कर, अगर चित्त पड़ेगा तो जाएंगे, अगर पट्ट पड़ेगा तो नहीं जाएंगे। दूसरे दिन वो दफ्तर न गया, सांझ को मुझे दिखा। मैंने कहा क्या हुआ। उसने कहा कि सिक्का फेंका था मगर 10 बार फेंकना पड़ा तब पट्ट आया। तुम मुझसे पूछोगे किसी और से पूछ लोगे, मतलब की जब बात आ जाएगी 10 बार फेंक लोगे, जब पट्ट आ जाएगा तो अपने मतलब की बात पूरी होगी। करोगे तो तुम अपनी ही फिर शास्त्रों को सदगुरुओं को बीच में क्यों लेते हो। उनको बीच में लेने के कारण धोखा पैदा होता है। मेरी सुनो, करो अपनी जिंदगी से पूछो क्या सही। जिंदगी के वक्तव्य कभी झूठे नहीं होते। मैं भी तुमसे कह सकता हूं, मैं जानता हूं कि जिंदगी का ही यही वक्तव्य है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, लेकिन इतने सस्ते में तुम्हें मिल जाएगा तो तुम इसका मूल्य न समझ पाओगे। जाओ जिंदगी में खरीदो, अर्जित करो, जो अर्जन से मिलता है उसका ही मूल्य गहरा बैठता है, वही रूपांतरित करता है। आज इतना ही। Thank you.
इस एपिसोड में हमने म्यूजिक म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से और आनंद रिचा की लेटेस्ट एल्बम प्रेयर्स ऑफ लव से सुना। लास्ट में हम सेलिब्रेशन म्यूजिक के साथ सेलिब्रेशन में उतरेंगे और ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।